Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं उसे ईरान रेडियो ने तैयार किया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। इसराइली सेना फिलिस्तीनियों विशेषकर बच्चों को विभिन्न तरीकों से गिरफ्तार करती है। घर से गिरफ्तारी, सड़क और चौकियों से गिरफ्तारी, तथाकथित या दिखावटी अपराध स्थलों से गिरफ्तारी, सामूहिक गिरफ्तारी। इसराइली सेना इन गिरफ्तारियों में से किसी में भी बुनियादी मानवीय और कानूनी सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती है। दोस्तों सलाम, मैं हूं अख्तर रिज़वी और बच्चे जिनका बचपन छीन लिया गया नामक पॉडकास्ट के पांचवें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे फिलिस्तीनी बच्चों को इसराइली सेना गिरफ्तार कर लेती है। जी हां, हम हिरासत केंद्र में स्थानांतरण और फिलिस्तीनी बच्चों के कारावास की कई दस्तावेजी और वास्तविक गवाही की समीक्षा करते हैं। बच्चे जिनका बचपन छीन लिया गया पॉडकास्ट के पांचवें एपिसोड में मेरे साथ रहिए। इसराइली सेना विशेषकर फिलिस्तीनी बच्चों या फिलिस्तीनियों को विभिन्न तरीकों से गिरफ्तार करती है। घर से गिरफ्तारी, सड़क और चौकियों से गिरफ्तारी, तथाकथित या दिखावटी अपराध स्थलों से गिरफ्तारी, सामूहिक गिरफ्तारी। इसराइली सेना इन गिरफ्तारियों में से किसी में भी बुनियादी मानवीय और कानूनी सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती है। गिरफ्तारी के सबसे क्रूर तरीकों में से एक है घर से गिरफ्तारी। इसराइली सेना अक्सर आधी रात में बच्चों के घरों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आमतौर पर गिरफ्तारी इस तरह से की जाती है कि बड़ी संख्या में इसराइली सैनिक संबंधित व्यक्ति के घर को घेर लेते हैं और बिना कानूनी दस्तावेज या वारंट गिरफ्तारी के घर में घुसकर बच्चे को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हैं। सैनिक आमतौर पर घर की तलाशी लेते हैं और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाते हैं या तोड़ फोड़ देते हैं। वे संदिग्ध व्यक्ति या बच्चे के परिवार के सदस्यों को मौखिक या शारीरिक रूप से परेशान भी करते हैं। इनमें अपमान करना, अश्लीलता, धमकी देना, यौन उत्पीड़न और मारपीट करना इत्यादि शामिल है। अदालत में कुछ बच्चों और पीड़ितों की गवाही इस तरह दिलवाई जाती है। याम, हेब्रोन और अल अरूब शरणार्थी शिविर से 15 वर्षीय सुल्तान मेहदी की गवाही सुनते हैं। लड़के ने कहा, रविवार 5 नवंबर सन 2000 को लगभग आधी रात को यानी 12:30 पर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मेरे माता पिता भाई बहन भी जाग गए थे। दरवाजे के पीछे एक आदमी ने अरबी में कहा, वो इजरायली सैनिक है और उसने हमसे दरवाजा खोलने को कहा। इससे पहले कि मेरे पिता दरवाजा खोलते, सिपाहियों ने दरवाजे के हैंडल को लात मारकर तोड़ दिया। बाकी सिपाहियों ने दरवाजे के दोनों पल्ले तोड़ दिए और हमें दरवाजा खोलने के लिए वे चिल्ला रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, कई सिपाही लिविंग रूम में दाखिल हो गए। सिपाहियों ने अपने चेहरे पर काले रंग लगा रखे थे और उनके साथ दो पुलिस अधिकारी भी थे। जब वे घर में घुसे तो उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर बंदूकें तान दीं। एक सिपाही ने मेरा नाम पूछा। मैंने डरते डरते और कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम नादिर है और मैं 10 साल का हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि मेरा भाई मोहम्मद कहाँ है। मेरे पिता ने उन्हें बताया कि वो ऊपर है। सैनिक ऊपर गए और मोहम्मद को साथ लेकर लौटे। मोहम्मद के हाथों और आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। इस बीच बाकी सिपाही तेजी से कमरों की तलाशी ले रहे थे। जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया तो वे घर से निकल गए और मोहम्मद को अपने साथ ले गए, लेकिन 2 मिनट बाद वो दोबारा घर में घुस गए। दरवाज़ा खुला था, वे अंदर आए और सीधे मेरे पास आए। पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा असली नाम सुल्तान है। मैंने भी कहा, यह सच है। और मैंने उन्हें अपना असली नाम नहीं बताया। एक सिपाही ने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। 2 इजरायली सैनिक मुझे कंधे से पकड़े हुए थे और मेरे कंधों से खींचकर एक सैन्य जीप में उन्होंने मुझे फेंक दिया, जो मुख्य सड़क पर हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। हेब्रोन क्षेत्र के अल अरूबा शरणार्थी शिविर से 17 साल के मुराद अबू जौदा बताते हैं कि उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया था। 15 दिसंबर 2000 को आधी रात के 12:45 का वक्त था। मैं और मेरा परिवार सो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होने की आवाज़ से हम जाग गए। मेरे पिता दरवाजे पर गए। इसराइली सैनिकों ने दरवाजे के पल्ले तोड़ दिए और अचानक घर में घुस गए। उनमें से 3 ने सादे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। इसराइली खुफिया संगठन के 2 सदस्य भी सादे कपड़ों में मौजूद थे। एक सिपाही ने मेरा नाम पूछा और मेरा आईडी कार्ड मांगा। मैं अपना आईडी कार्ड लेने के लिए कमरे में गया और एक सिपाही मेरे पीछे पीछे आया। जब मैं दराज की चाबी उठाने के लिए नीचे झुका तो सिपाही ने मेरी पीठ पर कई बार लात मारी और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। आखिरकार मुझे कार्ड मिल गया और मैंने अपना आईडी कार्ड इजरायली सैनिक को दे दिया। उसे मेरे सामान में कनाडा का हवाई जहाज़ का टिकट भी मिला। मैंने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सितंबर में कनाडा की यात्रा की थी। सिपाही ने कहा, मैं पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेने के लिए कनाडा गया था। उसने मेरी सारी चीज़ों की तलाशी ली, फिर वो मुझे गर्दन से पकड़कर घर के मेन कमरे में ले गया। वहाँ मैंने देखा कि इजरायली सैनिकों ने घर का सारा फर्नीचर बर्बाद कर दिया था। नकाब पहने एक सैनिक ने मेरे कान में धीरे से कहा, हम तुम में से हर एक का बलात्कार करेंगे। 14 वर्षीय मोहम्मद जऊल बैतलहम ज़िले के हुसान इलाके में रहता है। वो अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताते हुए कहता है, सोमवार 25 दिसंबर 2000 को लगभग 1 बजे रात को मैं दरवाज़ा खटखटाने की भयानक आवाज़ से जाग गया। मेरे पिता ने दरवाज़ा खोला, तभी 10 सैनिक घर में दाखिल हो गए। उनमें से कुछ मास्क पहने हुए थे। उनमें कमांडर रामी सहित बाकी के चेहरे पर काली रेखाएं खींची हुई थीं। कुछ ही सेकंड में 4 सिपाही मेरे कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है और मुझे जल्द से जल्द अपने कपड़े पहनने को कहा। फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। हुसान के बैतलहम ज़िले के 14 वर्षीय हमज़ा जऊल भी बताते हैं कि उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। शनिवार 6 जनवरी को सुबह लगभग 2:30 पर मैं एक इजरायली सैनिक की आवाज़ से जाग गया। सिपाही मेरे सिर पर खड़ा था और मुझे उठाने के लिए जोर जोर चिल्ला रहा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन असल में सिर पर मास्क लगाए कई इसराइली सैनिक मेरे सिर पर खड़े नजर आए। उनकी शक्ल मुझे वाकई डरा रही थी। तो मैंने अपने कपड़े पहने तो इसराइली सैनिक मुझे अपने साथ ले गए। फिलिस्तीनी बच्चों की ऐसी कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन हम इन्हीं को काफ़ी समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये तो बस कुछ उदाहरण है कि इजरायली गिरफ्तारियां कितनी क्रूर और संगठित होती हैं। अकेले गिरफ्तार होने से बहुत अधिक भावनात्मक क्षति हो सकती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों ने अपनी स्वतंत्रता से वंचित बच्चों के लिए अधिकतम संभव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत नियम और कानून दुनिया के सामने पेश किए हैं। फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए इसराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके इस अतिगणकारी शासन के अन्य तरीकों की तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से खुल्लम खुल्ला विरोधाभास रखते हैं और स्पष्ट रूप से सर्वोत्तम हितों के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। दूसरा मामला सड़क और चौकियों से गिरफ्तारी का है। इजरायली सेना आमतौर पर सड़कों से ही बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। ये काम किसी प्रदर्शन में या सड़क पर लोगों के गुजरते समय किया जा सकता है। इजरायली सैनिक को अचानक उस बच्चे का चेहरा या कपड़े याद आ जाते हैं जिसने एक बार उस पर पत्थर फेंके थे या किसी प्रदर्शन में भाग लिया था, और जब उसे बिना किसी बहाने के गिरफ्तार करने के लिए ही ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। गिरफ्तार होने के बाद इन बच्चों को आमतौर पर उनके आरोपों के बारे में बताया ही नहीं जाता है और उन्हें अपने वकीलों और रिश्तेदारों से संपर्क का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। अधिकांश बच्चों को लंबे समय तक हथकड़ी में बिना खाना खाए, पानी या आश्रय के, और कभी कभी तो सीधी धूप में या बारिश या अत्यधिक ठंड में भी इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ हम इस संबंध में कुछ रिपोर्टों पर रोशनी डाल रहे हैं। कभी कभी हमें बच्चों के नाम छुपाने पड़ते हैं क्योंकि हो सकता है कि इजराइल अभी भी इन लोगों पर नज़र रखे हो। इनमें से एक मामला AZ नाम के बच्चे से जुड़ा हुआ है। AZ को 2 अप्रैल 1999 को घर वापस आते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। सैनिकों ने उसे 4-5 घंटे तक सड़क के किनारे खड़ा कर रखा था जब तक कि दूसरे सैनिक ने आकर उसकी पहचान नहीं कर ली और पत्थर फेंकने के आरोप का आधार नहीं बन गया। दृष्टिगत सैनिक ने उस बच्चे को केवल 1 मिनट के लिए देखा था जिसने उस पर पत्थर फेंका था। उसके बाद वो गार्ड यहूदी बस्ती में बने अपने घर चला गया। वो AZ की पहचान करने के लिए पीछे मुड़ा। सिपाही ने बच्चे पर आरोप लगाया। अदालत में फिलिस्तीनी बाल रक्षा संगठन विभाग के बचाव पक्ष के वकील ने सैनिक से ये पूछा कि वो AZ की पहचान कैसे कर पाया। उसके कपड़ों से, उसने उत्तर दिया। जब बचाव पक्ष के वकील ने कहा AZ जैसे अन्य बच्चे एक ही वक्त में जीन्स और टी शर्ट पहने होंगे, तो इजरायली सैनिक ने ऐसी बात से ही इनकार कर दिया। AZ मामले की अदालत की सुनवाई 2000 के अंत तक जारी रही। ये जानना भी उचित है कि इजरायल 16 वर्ष से अधिक उम्र के फिलिस्तीनियों को पहचान पत्र जारी करता है जिसे उन्हें हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है। इजरायली सैनिकों के पास हमेशा हिरासत में लिए जाने वाले लोगों की पहचान संख्या की एक लिस्ट भी होती है। यदि बच्चे की पहचान संख्या वांटेड लिस्ट में है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। बच्चों के लिए ये पहले से जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनका नाम वांटेड लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि लिस्ट लगातार अपडेट होती रहती है। गिरफ्तारी के बाद बच्चों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता। हिरासत केंद्रों या पूछताछ केंद्रों में स्थानांतरित होने तक उन्हें अपने पैरों पर या घुटनों के बल बैठकर लंबे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि उनकी आंखों पर पट्टियां और हाथ पीछे से कपड़े से बंधे हुए होते हैं। गिरफ्तारी का तीसरा मामला अपराध स्थल से या तथाकथित घटना स्थल से गिरफ्तारी का है। इस तरह की गिरफ्तारी बहुत ही कम होती है। फिलिस्तीनी बच्चों को कभी कभी वहां से हिरासत में ले लिया जाता है जहां उन्होंने कोई अपराध किया है या करने वाले हैं, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया जाएगा। उन्हीं कुछ मामलों में फिलिस्तीनी बच्चे अपने लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकार कानूनों की सुरक्षा से वंचित हैं और गंभीर हिंसा का शिकार होते हैं। 15 वर्षीय सऊद गजाल को दिसंबर 1998 में वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में एक इसराइली सेटलर को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय से लेकर हिरासत और पूछताछ के आखिरी चरण तक इस लड़की को सबसे गंभीर दुर्व्यवहार और बुरे बर्तावों का सामना करना पड़ा। सऊद गजाल अपनी कसम लेकर दी जाने वाली गवाही में इस अवधि का जिक्र इस प्रकार करती हैं। 13 दिसंबर 1998 की सुबह मुझे तस्वी शेमरोन बस्ती के प्रवेश द्वार के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैं वहां से निकलने ही वाली थी तो सादे कपड़ों में दो इजरायली सेटलर्स अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने मुझे घेर लिया। फिर उन्होंने मुझे पीटा और मेरे सिर से मेरा स्कार्फ उतार कर फेंक दिया। वे रुके नहीं और मुझे घूंसों और लातों से पीटते रहे और मुझे जमीन पर कई मीटर तक घसीटते रहे। बस्ती के अंदर बड़ी संख्या में इजरायली सेटलर्स और सैनिकों ने मुझ पर जूते, बट और राइफल के साथ ही घूंसों और लातों से भी हमले कर दिए। वे मारते जा रहे थे और साथ ही मेरा अपमान भी करते जा रहे थे। 20 फरवरी 2003 को 15 वर्षीय रिहाम मूसा को इजरायली सैनिकों ने कई बार गोली मारी। सैनिकों ने दावा किया कि उनका इरादा उनमें से एक सैनिक पर चाकू से हमला करने का था। रिहाम ने बच्चों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की फिलिस्तीनी शाखा के वकीलों के सामने ये गवाही दी। जब सैनिकों ने मुझे देखा तो उन्होंने अचानक मुझ पर गोलियां चला दी। एक गोली मेरे पेट में लगी लेकिन तब भी मैं जमीन पर नहीं गिरी। मैं बिना हिले डुले उसी जगह पर खड़ी रही, ये सोच कर कि अगर मैं नहीं हिली तो उनकी गोलीबारी बंद हो जाएगी। लेकिन एक सैनिक ने फिर मेरे पैर में गोली मार दी। इस बार मैं जमीन पर गिर गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और फायरिंग की आवाज से बहुत से सैनिक उस इलाके में जमा हो गए और सभी ने उसे घेर लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझसे बातचीत करने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने मुझसे अपने कपड़े दूर से उतारने को कहा ताकि वे उसकी जांच पड़ताल कर सकें, लेकिन मैंने कहा कि जब तक वे मेरे लिए दूसरा कपड़ा या चादर नहीं लाते मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो वो मेरे लिए एक दूसरा कपड़ा लेकर आए। मैंने अपने नीचे के कपड़े उतारे और उनकी ओर फेंक दिया, जबकि मैं घायल थी और लगातार मेरे बदन से खून बह रहा था। सैनिकों ने जांच पड़ताल के लिए मेरे कपड़े जमीन से उठा लिए। कुछ समय बाद रिहाम को सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद भी उन्होंने उसे अस्पताल के बिस्तर पर जंजीरों से बांधे रखा। ये काम इलाज के आखिरी तक जारी रहा। चौथा मामला सामूहिक गिरफ्तारी का है। دراصل فلسطینی قصبوں اور گاؤں پر اسرائیلی سینا کے حملوں کی شروعات کے بعد سے اسرائیلی سینکوں نے ساموہک گرفتاریوں کے دوران سینکڑوں فلسطینی بچوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں گھر گھر تلاشی سے لے کر سڑکوں پر لوگوں کو اکٹھا کرنے اور سینا دوارا سارونک گھوشنائیں کرنے تک۔ سینا کی گھوشنا تھی کہ 14 سے 60 ورش کی آیو کے سبھی فلسطینی لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھر چھوڑ دیں اور اسکولوں یا انیہ آس پاس کی عمارتوں میں اکٹھا ہو جائیں۔ اپریل 2002 میں ویسٹ بینک میں اسرائیل کے سینیہ کمانڈر نے ایک سینیہ آدیش جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی سینک کسی فلسطینی کو 18 دنوں تک حراست میں رکھ سکتے ہیں بھلے ہی اس نے کوئی اپرادھ نہ کیا ہو۔ قیدی کو کسی وکیل سے ملنے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا اور اس کے لیے کوئی سنوائی نہیں کی گئی تھی۔ اس آدیش میں بچوں کے ساتھ ساتھ ویسکوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے انوسار 2000 میں کچھ ہی مہینوں کے اندر ہی ہزاروں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مانو ادھیکار کی رکشا کرنے والی سنستھاؤں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ گرفتار لوگوں میں 10% بچے تھے۔ اسرائیلی سینک پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس آپریشن کو انجام دیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ویسکوں جیسا ویوہار کرتے ہیں۔ حراست میں لیے گئے بچوں کی گواہی میں سندیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان میں سے ادھکانش کو ویوستھت اور گمبھیر درویوہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درویوہار جیسے ہتھ کڑی لگانا اور لمبے سمے تک آنکھوں پر پٹی باندھنا، بہت کم یا بالکل بھوجن نہ ملنا، چکتسا دیکھ بھال تک پہنچ نہ ہونا، بنا بستر کے زمین پر عمارت کے باہر سونا، بندیوں کو بھیڑ بھاڑ والی اور گندی کوٹھریوں میں رکھنا اور انت میں لگاتار شاریرک اور مانسک درویوہار جیسی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ درویوہار کیول 2002 کی گرفتاریوں کے دوران رپورٹ کیے گئے ہیں۔ بندیوں کو اکثر کمر تک کپڑے اتارنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مئی 2002 میں رپورٹ دی۔ سینیہ کیندروں میں ہزاروں بندیوں کی موجودگی کی وجہ سے بندیوں کو اپنے پریواروں اور اسرائیل رکشا بل IDF اور ویوسائے ویوستھا کی سرکشا ایجنسی GSS کو سوچت کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اکثر کچھ کے بارے میں آنکڑے اور جانکاری تک نہیں ہوتی ہے یا غلط طریقے سے جانکاریاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ اور بھی کڑوی بات ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد فلسطینیوں کو ادھک خطروں اور سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک کے ادھکانش حصے سیدھے قبضے میں ہیں اور اس کے نواسی سینیہ شاسن کے ادھین ہیں۔ سینیہ بل انہیں قیدیوں کی رہائی کا کوئی ثبوت نہیں دیتے، ID کارڈ کی واپسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ نتیجتاً ظاہری طور پر رہا کیے گئے ان بندیوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اسرائیلی سینکوں سے ٹکرائیں گے تو انہیں گولی مار دی جائے گی اور پھر سے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہی لوگوں کو کبھی کبھی آس پاس کی خالی عمارتوں میں یا دوسرے لوگوں کے گھروں میں شرن لینی پڑتی ہے۔ یہاں ہزاروں ادھارنوں کا ایک ادھارن ہے۔ یہ بیان سامے عطا جودہ نامک 17 ورشیہ ایک کشور کا ہے۔ वो बताता है कि 30 मार्च को सुबह 2:30 पर इजरायली सैनिकों के एक ग्रुप ने हमारे घर पर हमला कर दिया। कुछ सैनिक घर में घुस गए और कुछ ने हमारे घर को घेर लिया। सिपाहियों ने घर का फर्नीचर तोड़फोड़ दिया। उन्होंने हमें लातों, घूंसों और बंदूक की बटों से मारना शुरू कर दिया। फिर मुझे और मेरे भाई को एक फौजी गाड़ी में स्कूल ले जाया गया। उन्हें 2 दिनों तक स्कूल के प्रांगण में बिना चादर के हाथ और आंखों पर पट्टी बांध के बारिश में डाल दिया गया। सैनिक हम पर चिल्ला रहे थे और हमें मार रहे थे। 2 दिनों के बाद हमें ओफर सैन्य शिविर पहुंचा दिया गया। हमने पूछताछ कार्यालय के बगल वाले आंगन में अपने हाथ और आंखें बंद करके बारिश में 3 दिन और रातें बिताईं। इन 3 दिनों में उन्होंने हमें खाना या पानी नहीं दिया। 3 दिन बाद मुझे पूछताछ के लिए ले जाया गया। पूछताछकर्ताओं ने आम सवाल पूछे, मेरे दोस्त कौन हैं और मुझसे मिलने कौन कौन लोग आते हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने मुझे पीटा और धमकाया भी। पूछताछ के बाद मुझे 60 अन्य कैदियों के साथ एक छोटे तंबू में रखा गया, जहां खुद को ढकने के लिए चादरें या लिहाफ नहीं थे। इससे भी बदतर, कैंप में कई छेद थे और बारिश का पानी तंबू से टपक रहा था। 2 दिनों के बाद उन्होंने मुझे बैरक स्थानांतरित कर दिया। कुछ दिनों बाद वे अंततः हमें कलंदिया कैंप ले गए और आखिरकार यहीं पर हम आजाद हो गए। जब हम बस से उतरे, उन्होंने हमें फिर से पीटना शुरू कर दिया। हम कई दिनों तक स्कूल में कैद रहे। हमारे खाने का सामान बहुत कम था। मिसाल के तौर पर उन्होंने 4 कैदियों को आपस में बांटने के लिए एक सेब दिया था, या उन्होंने 10 कैदियों को दही का एक डब्बा दिया था। सन 2002 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल की मनमानी गिरफ्तारियों और फिलिस्तीनी बंदियों के साथ अमानवीय, क्रूर और अपमानजनक व्यवहार की जांच पड़ताल की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निंदाओं के बावजूद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां जारी रहीं। अप्रैल 2003 में तूल करम रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले फिलिस्तीनी लड़कों और पुरुषों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने में क्रूर और अमानवीय व्यवहार के लिए इजरायली सेना की व्यापक आलोचना की गई। राउंडअप, क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों से फिलिस्तीनियों में भारी दहशत फैल जाती है। वो डरते हैं कि बंदियों का भी वही हश्र होगा जो 1948 से 1967 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ हुआ था। ये कैदी कभी अपने घर नहीं लौट सके। एक अन्य मुद्दा लोगों का कैंपों में नस्लीय सफाई की संभावित शुरुआत का डर था। कैंप में रहने वाला एक 17 वर्षीय समीर उमर अप्रैल 2003 में राउंडअप के दौरान अपने अनुभव का वर्णन इस प्रकार करता है। इजरायली सैनिकों ने लाउडस्पीकर से 15 से 40 साल के पुरुषों और लड़कों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता एजेंसी के गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में हाजिर होने को कहा, और अगर ऐसा न किया तो सजा भुगतने की धमकी भी दी। थोड़ी देर बाद सिपाही हमारे घर में दाखिल हो गए। उन्होंने हमें गोली मारने की धमकी दी, इसीलिए हमने उनके निर्देशानुसार काम करने शुरू कर दिए। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूल के प्रांगण में बने कैंपों से हजारों पुरुषों और लड़कों के साथ जमा हो गए। तुलकरम कैंप में लगभग 18,000 लोग रहते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने पुरुषों और लड़कों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सैनिकों ने हमें कई ग्रुप्स में बांट दिए थे, 15 से 20 साल के बच्चों को बाकी लोगों से अलग एक कोने में खड़े होने का आदेश दिया गया था। वे हमें दूसरे कमरे में ले गए। इजरायली कमांडर ने हमसे पूछा कि क्या हम इजरायल के लिए काम करने को तैयार हैं या नहीं। उसने कहा, अगर हम सहयोग करेंगे तो वो हमें पैसे भी देंगे। जब उनका कमांडर चला गया तो उनमें से एक सैनिक ने हमें शहीदों की तस्वीरें फाड़ने और उन पर थूकने के लिए मजबूर किया। हमें यह करना ही था, सिर्फ इस डर से कि क्योंकि उसके पास बंदूक थी। उसी सैनिक ने पवित्र कुरान मजीद का एक नुस्खा जमीन पर फेंक दिया और एक कैदी से उसका अनादर करने और उस पर खड़े होने को कहा। लेकिन जब कैदी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने बंदी की कनपट्टी पर बंदूक तान दी और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसी समय कमांडर कमरे में दाखिल हुआ और सिपाही ने अपना काम बंद कर दिया। उसने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी, हमारे हाथों में पीछे से हथकड़ियां डाल दी। उसने हमें एक बड़े से सैन्य ट्रक में बिठा दिया। जब ट्रक रुका तो सुबह के 10 बज रहे थे। सैनिकों ने हमें बताया कि हम आज़ाद हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमें तुलकरम कैंप में अपने घरों को नहीं जाना है। मेरे लिए ये यातना का सबसे भयानक हिस्सा था। हम नूर शम्स कैंप के पास थे। मुझे पता था कि रिफ्यूजीज हमारी मदद करेंगे, लेकिन मुझे डर था कि मैं अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सभी का मानना था कि इसराइल इराक युद्ध का फायदा उठाकर सभी फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसकी ताज़ा कार्रवाई के पहले पीड़ितों में था। एक ऐसी कार्रवाई जिसका उपयोग पहली बार 1948 में और फिर 1967 में किया गया था, और इस बार 2003 में ये मुसीबत एक बार फिर हम पर टूट पड़ी। कुछ दिनों बाद हमें सूचित किया गया कि मार्शल लॉ हटा लिया गया है और हम अपने घरों को जा सकते हैं। भले ही हमारे घर सहित शिविर के कई हिस्सों पर हमले किए गए थे, मैं घर पहुंचने पर राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ১৯৯৯ से इसराइली सेना ने पत्थर फेंकने के आरोपी फिलिस्तीनी बच्चों की सामूहिक गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। वे फिलिस्तीनी बच्चों के ग्रुप्स को निशाना बनाते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा की समिति के फिलिस्तीनी अध्याय ने 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के हजारों से अधिक मामले पेश किए हैं जिन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय इन बच्चों पर किसी खास अपराध का आरोप नहीं है और उनके पास कानूनी उपकरणों तक पहुंच भी नहीं है। इसराइल इन बंदियों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग रखता है और ये जानने का कोई तरीका भी नहीं होता है कि इसराइल इन हिरासत केंद्रों में क्या कर रहा है। यहाँ आप सुनेंगे एक फिलिस्तीनी बच्चे की आपबीती। ये मामला मानवाधिकार रक्षा समिति की हजारों केस रिपोर्टों में से एक है। ये बैत लहम जिले के होसान के 15 वर्षीय मुफीद हमामेरा की एक उपयोगी रिपोर्ट है। वो कहते हैं, सैनिकों ने मुझे बाहर निकाला, उन्होंने मेरी आंखें पट्टी से बांध दी और मेरे हाथ पैर भी बांध दिए थे। हम लगभग 300 मीटर चलकर इजरायली जीप तक पहुंचे। उन्होंने मुझे उस जीप में बिठाया जिसमें स्पीकर मेरे सिर के पास लगा हुआ था। हर कुछ मिनट में वो जोर जोर से कुछ न कुछ चीज़ बचा रहा था। उसी समय एक सिपाही ने मेरे सिर पर जोर से हमला किया। एडजियन डिटेंशन सेंटर पहुंचने तक मैं 20 मिनट तक कार में था। उन्होंने मुझे केवल पतली और हल्की सी गर्मियों वाली एक टी शर्ट के साथ आधे घंटे के लिए ठंडी जमीन पर छोड़ दिया था। एक अन्य रिपोर्ट हेब्रोन क्षेत्र के दौरा इलाके से 17 वर्षीय तारिक अल रिबाई की है। वो कहते हैं इजरायली सैनिकों ने हमारे हाथ हमारी पीठ के पीछे बांध दिए, उन्होंने हमारी आंखों को हमारे कपड़ों से ढक दिया और हमें एक घंटे तक फर्श पर बिठाए रखा। एक कार आई और हमें अल फवार इलाके में ले गई। रास्ते में उन्होंने हमें लात मारी और भद्दी भद्दी गालियां दी। फिर वे हमें मजनूना हिरासत केंद्र में ले गए और दोपहर में फिर से हमें फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया। उसके बाद एक और कार आई और इस बार वो हमें दूसरे डिटेंशन सेंटर में ले गई। हम रास्ते में हिलने डुलने या बात करने की इजाज़त नहीं रखते थे। वे हमें पीटते जा रहे थे और हमारे साथ बुरा बर्ताव करते जा रहे थे। हमें और अधिक कष्ट देने के लिए उन्होंने गाड़ी धीमी चलाई ताकि हम हिरासत केंद्र तक देर से पहुंच सकें। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक 13 वर्षीय बच्चा था जिसका नाम एसके है। उसे सितंबर 1999 में अल जलाजून में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसके को एक सैन्य जीप में रखा गया जो लगभग 2 घंटे तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन आखिर में उसे बैतेल डिटेंशन सेंटर ले जाया गया जो उसके घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। लंबे समय तक इधर उधर टहलाने की वजह से एसके अपना घर पूरी तरह से भूल गया था। अपनी जगह या अपने घर के बारे में सैनिकों से उसके सवालों का जवाब इजरायली सैनिक नहीं दे पाते थे। मामले की रिपोर्ट से पता चलता है कि हिरासत की जगह से हिरासत केंद्र में स्थानांतरण को जानबूझकर लंबा किया गया है। इसकी 2 वजह हैं। या तो वे बच्चे को नेविगेट करने की अनुमति नहीं देते, या वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और यातना का समय बढ़ा देते हैं, या ये दोनों ही काम करते हैं। ज़ायोनी सेना के लिए परिवारों को उनके बच्चे की हिरासत की जगह के बारे में सूचित करना दुर्लभ बात है, इसीलिए परिवार के लिए बच्चे को ढूंढना बहुत कठिन और जटिल हो जाता है। मानवाधिकार संगठनों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पता लगाएं कि फिलिस्तीनी बच्चों को कहाँ रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीनी बच्चों को ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं। इससे भी अधिक कड़वी बात यह है कि हिरासत में लिए गए कई बच्चे 16 वर्ष से कम उम्र के हैं और उनके पास अभी भी आईडी कार्ड नहीं है, इसीलिए उनकी जानकारी सैन्य फाइलों में ठीक से दर्ज भी नहीं है। यहाँ तक कि जब बच्चों को स्थायी हिरासत केंद्र में रखा जाता है तब भी सेना उन्हें अपने परिवारों से मिलने या वकील से मिलने की इजाज़त नहीं देती। फिलिस्तीनी बच्चों के मामलों की पैरवी करने वाले एक वकील का कहना है कि इसराइल ने उन्हें पहली अदालत की सुनवाई से पहले केवल 10% बच्चों से ही मिलने दिया जिनका वो केस लड़ रहे थे। इजरायली सैनिकों को कैद में किए गए बच्चों से निपटने की पूरी आज़ादी है। सैनिकों की कार्रवाइयों पर कोई आंतरिक या बाहरी नियंत्रण नहीं होता। कुछ मामलों में फिलिस्तीनी बच्चों की हिरासत में लिए जाने की तुरंत बाद मौत हो जाती है। मुराद अवैसा की 2002 में इसराइली हिरासत में मौत हो गई। मुराद केवल 17 वर्ष का था। उसी वर्ष दिसंबर में एक 18 वर्षीय फिलिस्तीनी का शव उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही मिनट के बाद वेस्ट बैंक में लोगों को मिला। पहले तो सीमा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, लेकिन आगे की जांच और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के दबाव के बाद सीमा पुलिस के पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फिलिस्तीनी लड़ाकों द्वारा अपने एक मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए 18 वर्षीय फिलिस्तीनी युवक की हत्या का दोषी ठहराया गया। हत्यारों ने कैमरे के सामने फिलिस्तीनी बच्चे की पिटाई की और इसकी गवाही भी दी। जांच आगे बढ़ने पर इजरायली पुलिसकर्मियों के तमाम तरह के दुर्व्यवहार सामने आने लगे। फिलिस्तीनी बच्चों के साथ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना सहित हिंसक व्यवहार, बच्चों को गिरफ्तार करने और इजरायली हिरासत केंद्रों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की अहम खासियत है। गिरफ्तारी बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही की गई है। अचानक गिरफ्तारी के सदमे से अस्थिरता की भावना पैदा होती है और गिरफ्तार बच्चा समय और स्थान को भूल जाता है। किसी व्यक्ति को घर से गिरफ्तार करना, जो कि आम तौर पर आधी रात को किया जाता है, ये हमले फिलिस्तीनी बच्चे और उसके परिवार की सबसे कमज़ोर स्थिति में नींद की हालत में किए जाते हैं। उनकी प्राइवेसी का हनन होता है और वो भी घर पर, जहां उन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। इससे भी अधिक भयावह वो बात है कि इजरायली सैनिकों के अलावा इजरायली सेटलर्स को भी बिना किसी अदालती आदेश के फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने की इजाज़त होती है। बेशक ये सभी चीज़ें सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी जाती हैं। फिलिस्तीन में असुरक्षा और जुल्म का माहौल बुरी तरह से फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर देशों के मुंह अभी भी बंद हैं और ऐसे जुल्म पर वे आंखें भी बंद रखे हुए हैं।